ಸಾಕು. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ವೇತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರಿ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ತವ ಮೇರೆ ಅಪನಾ ಅನುಭವ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಕಾ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಉಸಕ್ಕೆ ಬಾದ ಫಿರ್ ಭಗವಾನ್ ಸಹಾಯತಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಸಿಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯಾ ಸಮಝಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಆಪ್ ವೋ ಪಿಛಲೆ ಏಕ ಘಂಟೆ ಸೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಯೆ ಇಸ್ಕಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಕಾರಣ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಮೈ ಭೂಲ್ ಗಯಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 41 ಮೇ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕಹಾ ಹೈ ಕಿ ಅಸಫಲ ಯೋಗಿ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ उसको हायर प्लैनेट्स में सुख भोग के लिए भेजा जाता है, स्वर्ग में भेजा जाता है और बाद में उसका जन्म होता है किसी पवित्र खानदान में या धनवान खानदान में उसका जन्म होता है। तो बलदेव विद्याभूषण भी कहते हैं और श्री प्रभुपाद जी ने भी बताया कि दो प्रकार के असफल योगी होते हैं। एक असफल योगी को जो शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस के बाद पतन प्राप्त करता है, दूसरा असफल योगी की जो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के बाद पतन जिसका होता है। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस के असफल योगी की गति क्या होती है ये बताया गया है। यहाँ पर कहा गया कि जो शॉर्ट टर्म योग का पालन करने वाला है वो व्यक्ति को स्वर्ग में भेजा जाता है। अभी 3 दिन पहले एक भक्त मुझे पूछ रहे थे, इसी प्रकार का कोई प्रश्न था, वो प्रश्न में ऐसा पूछ रहे थे कि वो उसी दिन पूछ रहे थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे ना उसी दिन मुझे पूछ रहे थे कि इन लोग का, मारने वालों का और मरने वालों का, ये दोनों का गति क्या होगा, इस प्रकार का मुझे बता रहे थे। तो संक्षिप्त में मैंने बताया 10 मिनट के अंदर। तो इसमें ये बात आई थी कि अगर असफल, वो भक्त ने ऐसा प्रश्न पूछा कि ये तो ऐसा है लेकिन भक्त के विषय में क्या, तो फिर मैंने बताया कि असफल योगी है अगर वो कुछ ही समय में अभ्यास किया और उसका पतन हो गया तो उसको सिद्धि तो प्राप्त नहीं हुई है अभी, तो उसको स्वर्ग में भेजा जा सकता है। फिर तो वो प्रश्न मुझे ऐसा पूछा, यमदूत आएंगे क्या उनको लेने के लिए? मैंने कहा नहीं, स्वर्ग में जाने वाले लोग के लिए यमदूत नहीं आते, स्वर्ग का विमान आता है, वो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में वहां पर सुख भोग करता है और यहाँ की तुलना में उसका सुख बहुत बड़ा होता है और कई सालों तक वो पता भी नहीं पड़ता उस साल कैसे निकल जाते उसके, तो सुख भोग करके फिर इधर गिरता है किसी पवित्र खानदान में या धनवान खानदान में। और उसको क्यों पवित्र खानदान और धनवान खानदान? ताकि वो अपनी भक्ति को फिर से उजागर कर सके। लेकिन इसमें समस्या क्या रहती है कि वो धनवान खानदान में गिरने के बाद हो सकता है कि वो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद बन जाए, तो वो उसका दुरुपयोग करे या फिर भौतिक ऐश्वर्य में फंस जाए या सुख भोग में गिर जाए, तो ये उसकी समस्या रहती है। और पवित्र खानदान में जन्म लेने का उसको ये फायदा होता है कि पुण्यशाली खानदान यहाँ पर लिखा है, यू नो, इनटू फैमिली ऑफ रिचियस पीपल, पुण्यवान लोगों के यहाँ पर उसको जन्म दिया जा सकता है। सो स्वर्ग में वो जाएगा और जाने के बाद फिर क्या होगा, डिटेस्टफुल हो जाएगा, क्या होगा उसका, उसको सवाल कितना भोग करेगा आदमी, अरे बस संतुष्ट हुआ, बोले बस बहुत हो गया, कितना भोग करेगा आदमी, इंद्रिय भोग करते 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 अब उब चुका मन मेरा, बस अब नहीं करना ये सब, तो क्या करना है, बस वो इसी यही था जो मैं वो पहले कर रहा था ना, वही अच्छा था, क्या अच्छा था, वो भले कुछ नहीं कर रहा था, हरे कृष्ण कर रहा था, वही अच्छा था। ऐसा होता है, वो लोग भाग जाते हैं कृष्ण भक्ति छोड़ करके, तो फिर अंत में वापिस आ जाते हैं और पूरा दुनिया घूम के आया, कहीं किसी ने रखा नहीं मुझे, कोई शेल्टर नहीं मिला, तो वापिस आ गया आपके पास, ऐसा होता है। तो श्रीमत सुचिनाम एंड श्रीमताम, ये दो परिणाम हो सकते शॉर्ट टर्म वाले के, सुचिनाम अर्थात पवित्र और श्रीमताम अर्थात धनवान, तो दो में से किसी एक के पास उसको भेजा जाता है। अभी लॉन्ग टर्म सूची नाम और श्रीमताम,
प्रभु जी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पवित्र धनवान है उन्हें कहा जाता
है? जरूर नहीं है, दो में से कोई भी एक, या फिर दो एक साथ भी हो सकता है।
हाँ, ऐसा भी हो तो ज्यादा बेहतर है।
हाँ दो दोनों साथ में ही हो सकता है, that's fine. लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका वर्णन सेकंड टेक्स्ट नंबर 42 में आता है, और श्री प्रभुपाद इसको अधिक बल देते हैं कि वो ऊपर वाला थोड़ा रिस्की है, 41 वाला थोड़ा रिस्की था, ये 42 वाला जो है ना वो अप्रोप्रिएट है किसी वैष्णव के लिए. पढ़िए.
अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है. निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है.
यस yes. ये दूसरा लॉन्ग प्रैक्टिस वाला असफल योगी है. उसको स्वर्ग में भेजने की आवश्यकता नहीं है, उसको स्वर्ग बाधारूप मानते हैं लोग, वैष्णव लोग. बाधा वो कहाँ है, फंस गया उसके अंदर, स्वर्ग में चला गया बेचारा. हाँ. लेकिन यहाँ पर इट टेक्स बर्थ इन अ फैमिली ऑफ अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म होता है कि जो पहले से ही भक्त हो. हाँ. पहले से ही दीक्षित हो या कृष्ण भक्ति में जुड़े हो, या जिनके घर में चार नियम का पालन पहले से ही हो रहा है, या जिनके घर में भगवान के विग्रहों की स्थापना हो चुकी है, उनकी पूजा हो रही है, जिनके घर में भोग लगा कर खा जाता है, ये एक भक्त का वातावरण, जिनके घर में तुलसी का पौधा है, इस प्रकार का वैष्णव परिवार में उसको जन्म प्राप्त हो, ये लॉन्ग टर्म वाले का है. इसलिए श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में अपने स्वयं के विषय में बता रहे हैं. By the grace of the Lord, there are still families that foster transcendentalist generation after generation. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Fortunately, both our spiritual master, Om Vishnupad Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, and our humble self had the opportunity to take birth in such families by the grace of the Lord, and both of us were trained in a devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. Later on, we made by the order of the transcendental system. तो बहुत सुंदर प्रपोर्ट में प्रभुपाद ने अपने अपने विषय में लिखा है प्रभुपाद जी ने कि प्रभुपाद का जन्म भी वैष्णव खानदान में हुआ था, वैष्णव परिवार में हुआ था. उनके पिताजी गौरमोहन डे और उनकी माता रजनी, ये दोनों ही बहुत ही पक्के वैष्णव थे. यहाँ तक कि प्रभुपाद के जन्म के समय में भी उनके घर पर कीर्तन का आयोजन था, हरे कृष्ण कीर्तन का. जब उनका जन्म हुआ उस समय भी वहां पर कीर्तन हो रहा था उनके घर में, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए थे. हालांकि वो कोई गौड़िया मठ में या इस्कॉन था ही नहीं उस समय, तो प्रभुपाद का जन्म हो रहा था तो, लेकिन वो लोग उनके घर में राधा गोविंद जी का सेवा था, पूजा करते थे. और गौरमोहन बहुत ही भले आदमी थे, उनका हृदय एकदम प्रभुपाद के पिता बहुत ही वैष्णव उनका हृदय था. भक्तिदान सरस्वती महाराज को ही मानते थे, चैतन्य बाबू को मानते थे. उनका एकमात्र इच्छा था कि मेरा बेटा आगे जाके राधा रानी का बहुत महान भक्त बने, ये उनका हमेशा इच्छा रहता था. और वो बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ में कृष्ण पर निर्भर रहते थे, हर एक वस्तु के लिए वो कृष्ण पर निर्भर रहते थे. वो अपने जीवन को गृहस्थ जीवन को इसी तरह से चलाते थे, कृष्ण भक्ति पर निर्भर रहना. भक्तिनाथ ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिताजी थे, और वो भी बचपन से ही भक्ति सिद्धांत वैष्णविज्म में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर स्वयं एक आचार्य है, उनका बेटा भी आचार्य था. इसे बहुत स्पेशल है, बेटा भी आचार्य और पिता भी आचार्य. सो प्रभुपाद अपना बता रहे, वर्णन कर रहे, तो इस तरह से हमारे जीवन में भी यहाँ पर देखते, जब भी किसी वैष्णव के घर पे बालक का जन्म होता है, दीक्षित है या अदीक्षित है, वॉट एवर, माला का जप कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है, तो उसके घर में जो बच्चा आता है वो कहीं ना कहीं अपनी साधना को पूरा करने के लिए ही आ रहा है. अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स दोनों ही भक्त है, तो वो योग भ्रष्ट आत्मा है. पहले पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उसने भक्ति की होगी, और आज उसको इसका आगे का हिस्सा खत्म करने के लिए. सो यहाँ पर इस बात का स्पेशल बताया गया. अब भगवान बताते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये टेक्स्ट नंबर 42. भगवान स्वयं बताते हैं, पढ़िए. 43 में
हे गुरु नंदन, यो जन्म पामी ने ते पोताना पूर्व देहनी देवी चेतना पुनः प्राप्त करे छे अने पूर्ण सफलता प्राप्त करवाना उद्देश्य थी ते वधारे उन्नति पामवानो प्रयास करे छे.
यस, सो लास्ट टाइम का उसका होता है, उसके आधार पर उसको इस समय में उसको पूर्ण अवसर प्राप्त होता है. He revives the divine consciousness of previous life and again tries to make further progress in order to achieve complete success. हमने ऐसे कई भक्त भी देखे हैं जिनको पूर्व जन्म की स्मृति है, और जानते हैं पूर्व जन्म में क्या हुआ था. एक भक्त थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, एक्सीडेंट हो गया था उनका और वहीं पर देहांत हो गया था, और फिर वो सारी घटना उन्होंने दूसरे जन्म में बताई थी. नहीं, ये तो यूरोप में, लंदन में, कि वो उनका इस तरह से देहांत हो गया था और फिर बताया पूरा कि इस तरह से. एक भक्त मुझे मिले थे, वो भक्त अभी तक वो वृंदावन गए नहीं थे, क्योंकि वो मुझे स्मरण है, वो जब शुरू से जुड़े और मुझे सारा डिस्क्राइब करने लगे, वृंदावन में ऐसा है, ऐसा है, इस तरह से है, वैसा. मैंने कहा आप कब गए हो वृंदावन? बोले मैं आज तक नहीं गया. फिर वो गए, मैंने तब मैंने जानबूझ कर उनको कहा नहीं कि नहीं तुम बता रहे हो तुम्हारे पूर्व जन्म, कुछ नहीं कहा मैंने. मैंने उनको कहा ठीक है अभी आप वृंदावन जाइए. तो जब वो वृंदावन गए तो फिर वो आकर के इतना खुश हो गए, आकर के बोले प्रभु जी मैंने आपको बताया था ना बिल्कुल वैसा ही था, उसको कोई परिवर्तन नहीं था, बिल्कुल वैसा ही था. तो अब मैं उनको कैसे बताऊं कि हो सकता है कि आपकी पूर्व जन्म की स्मृति होगी, इसलिए आप ये सब बता रहे थे. बट मैं नहीं चाहता था कि वो इस भाव को लेकर के, पूर्व जन्म की स्मृति को लेकर के किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का अभिमान करे, इसलिए मैंने इस भावना को पहले से तोड़ दिया. हाँ ठीक है ठीक है, हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन तो कहने का तात्पर्य कि ये हो सकता है, पूर्व जन्म की स्मृति हो सकती है. कुछ अचानक से याद आता है, ये ऐसा डर भरत की कथा आपको पता है ना. भरत महाराज, वो उनका शरीर त्याग कर दिया था बद्री का आश्रम में, पुलहा आश्रम के पास. तो जैसे उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, वो हिरण बनने के बाद फिर से वहीं पर भाग गए हिरण पुलहा आश्रम में, और वहां पर आश्रम के बाहर बैठ करके सुनते रहते. देखा था कोई भी आके सोचेगा ना, बोले हिरण क्यों आता रहता है? कई बार होता है आपको पता है, कुत्ता आता रहता है. आप लेक्चर देते वो एक ही कुत्ता होता है, बस उधर आके बैठ जाता है बस. ऐसे तो मैंने कई कुत्ते भी देखे और बिल्लियां भी देखी है. हमारे घर जगन्नाथपुरी में राजापुर में एक कुत्ता था, वो कुत्ते को आप एकादशी के दिन कितना भी अन्न दोगे खाएगा ही नहीं. वो एकादशी के दिन फास्टिंग ही करेगा. और उसको किसने ट्रेनिंग नहीं दी थी? उसने कोई भक्ति शास्त्र नहीं किया था, उसने पूरा फॉरन करता. हाँ क्या बताइए.
मेरे फादर जो थे वैष्णव थे, और मतलब वो पूरा जीवन उनकी भक्ति में ही रहता, कृष्ण के ही भक्त थे. उन्होंने 1975 में जैसे जब प्रभुपाद जी यहाँ प्रचार कर रहे थे, तो और हमारा घर जो रतनपुर में था, रतनपुर भोगला मुझे कारखाने वहीं, तो उन्होंने वहां इस्कॉन वाले को बुलाया था और फॉरेनर डिवोटी वहां आए थे. और तब से मुझे पता, उस टाइम तो मैं छोटा था, तो उस टाइम से इस्कॉन के साथ मेरा कनेक्शन हुआ. मुझे पता नहीं था कि इन फ्यूचर में मैं जुड़ने वाला हूँ. तो अभी उनके जो संस्कार और मेरी कुछ आधी अधूरी होगी, तो इस्कॉन में फिर से
जुड़ने वाला. तो ये ये अवश्य होता है ऐसा, पूर्व जन्म की स्मृति के कारण. और फिर वो जो जलव्रत का क्या हुआ, हिरण के बाद दूसरा जल उसको प्राप्त हुआ शरीर, तो वो क्या बने, जलभरत. और ये जलभरत के आचरण में पैर बोले वहां पर गलती किया था, अब तो तुम्हारी हिम्मत तो दिखाओ करके, मैं तो गलती करने ही नहीं वाला. अरे जड़ की तरह रहेगा तो उसको बेटा तू ये कर ले, नहीं इतना बोले किसी से बात करूंगा तो प्रॉब्लम, बात ही नहीं करूंगा, जड़ एकदम बिल्कुल. और खाने का बोलूंगा मुझे पसंद है नहीं पसंद है, तब प्रॉब्लम होगी ना, बोलूंगा ही नहीं, जो देंगे खा लूंगा. तो ऐसे जड़ की तरह वो रहना शुरू किए. क्यों? क्योंकि उनको पूर्व जन्म का स्मरण था, अर्थात पूर्व जन्म की. जैसे कई बच्चे होते हैं, वो इतना छोटे बच्चे हैं, उनको कोई नहीं सिखाता फर्स्ट क्लास मृदंग बजाता है। हमारी ब्यूरी है यहाँ पर अहमदाबाद में, उनका बेटा शायद एक डेढ़ साल का ही होगा, डेढ़ साल का था जब, डेढ़ या दो साल का, तब से मृदंग बजा रहा है। अब सोचो उसको किसने सिखाया, डेढ़ दो साल में बच्चा क्या सीखेगा, और सक बजाता है। और अभी तो देखो है इतना छोटू सा बजाता है मृदंग, मुझे पता है शुरू से बजा तो पहुंच भी नहीं पाता था मृदंग के हाथ तक दोनों, लेकिन बजाता है ढंग से बजाता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बच्चे की तरह बजा रहा है, ढंग से बजाता है, मन से बजाता है। तो वो कैसे हो, तो ऑब्वियस है वो पूर्वजन्म का उसका संस्कार है, इसीलिए उसको आता था बजाता था। अच्छा आपको क्या बजा, अभी इस समय अच्छा बजा रहा है, राइट। सो ये ज्यादा अवसर होते हैं कि ये अच्छा है एक्चुअली, वो किसी पवित्र धनवान के घर पे जन्म लेने से तो ये ज्यादा अच्छा है। इसलिए धनवान के घर पे जन्म लेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो टाटा बिरला मान जैसा उसका बेटा राजकुमार बनेगा, यू नो, और आईपीएल में फिर प्लेज करेगा, क्या करने का इसका, इससे अच्छा है कि किसी वैष्णव के खानदान में जन्म ले।
हाँ। जो भरत महाराज नेक्स्ट जन्म में जड़ भरत बने, तो कौन से दूसरे रूप जी के भरत किए थे के दूसरे भरत,
वही भरत जो भरत महाराज थे ऋषभदेव के बेटे,
दुष्यंत के बेटे,
नहीं दुष्यंत के बेटे नहीं,
वो वाला वो जिनके नाम से भारत नाम पड़ा वो उसके
बाद, मतलब ऋषभदेव का बेटा भरत,
दोनों अलग,
ऋषभदेव का बेटा भरत और ऋषभदेव का ये बेटा जो भरत, वही भरत महाराज जिन्होंने अंत में हिरण से वो आकर्षित हुए थे, वो भरत था।
ये उनकी बात कर रहे जो दुष्यंत और शकुंतला से जो वो भरत पड़ा था जिसके नाम पे भारत नाम पड़ा, वो
दोनों ही के नाम से भारत नाम पड़ा है।
वैसे तो ऋषभदेव जी के भरत थे उनके नाम से भारत पड़ा था, लेकिन बाद में वो री इन्वेंट होकर उनके नाम से पड़ा,
तो इसलिए दोनों ही, ये ऋषभदेव वाले जो भरत है वो प्राचीन है,
भगवान जी के अवतार माने, कंफ्यूज हो गए, भरत थे भी भरत थे, बराबर वो भी भरत थे,
यस, रामचंद्र का भाई जो भरत है उसके नाम से भरतपुर पड़ा, जो भरतपुर है ना वो उसके नाम से पड़ा है भरतपुर, रामचंद्र का भगवान राजा थे उधर भरत, रामचंद्र ने भेजा था उसको। सो टेक्स्ट नंबर 44 में भगवान इसको आगे बताते हैं, पढ़िए।
अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वो न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है, ऐसा जिज्ञास योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है।
हाँ, यहाँ पर क्या लिखा गया स्पेशल कि वर्च्यू ऑफ द डिवाइन कॉन्शियस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अट्रैक्टेड, ऑटोमेटिकली। अगर जहां से देखा जाए तो हम भगवान से बहुत ही दूर या भूले हुए हैं, अनादि बहिर्मुख, अनादि आदिकाल से भगवान से बहिर्मुख हुए हैं, इसलिए हमारे लिए कृष्ण भक्ति को बड़ी स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। अर्थात हमारे जो परिवर्तन है या माया से जो विमुक्ति या माया से छुटकारा है इतना आसान नहीं, वो टाइम लगता है उसको प्रोसेस में, क्रॉनिक डिसीज है, कई कई जन्मों का है ना, तो उसको दो चार डोज में ठीक नहीं होता, वो उसमें अधिक समय चाहिए। लेकिन यही प्रश्न है, जैसे जैसे मृदंग की बात मैं बता रहा था आपको, अभी मृदंग कई लोग दो दो साल पढ़ाने के बाद, तीन तीन साल पढ़ाने के बाद भी एक तार भी ढंग से बजा नहीं पाते, और बिना किसी सिखाए, किसी को बिना सिखाए तुरंत ही बजा लेते। मैं 12-13 साल में जुड़ा नहीं था और बजाना शुरू कर दिया था मृदंग, और मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे किसने सिखाया था, ऐसे ही बजाना शुरू कर दिया था मृदंग, और वो एकदम वही ऐसे ही बजा जो सब लोग बजाते हैं, जो वैष्णव बजाते, उसी प्रकार से बजाता था मृदंग, मुझे नहीं पता किसने सिखाया। लेकिन भक्ति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ना चाहते तो अचानक से ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये होता है कि वो व्यक्ति को पूर्व जन्म से किसी प्रकार से कोई कनेक्शन है, तब जाकर वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में इस तरह से आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर पूर्वाभ्यास दिखा हुआ है, पूर्वाभ्यास, और पूर्वाभ्यास से क्या होता है, रियते, रियते का अर्थ होता है अट्रैक्ट करता है उसको। एक भक्त, एक लड़की थी, वो अपनी माँ को, ये 10 साल पहले की बात होगी, वो विदेश में, विदेश में ना कृष्ण का नाम किसी ने सुना है ना देखा है ना कुछ नहीं। एक बार उसने कहा कि मुझे उस दिशा में ले चलो। उसकी माँ बोली, बेटा क्या करेगी उस दिशा में? बोले, नहीं मुझे उस दिशा में ले चलो, मुझे उधर जाना है। तो उसको उधर लेकर के गए, और हाँ देखा था, ये हरे कृष्ण वाले सब थे, ये इंद्रदमन स्वामी का वुडस्टॉक फेस्टिवल जो है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, पोलैंड फेस्टिवल। तो उधर लेके गए, और वहां पर देखा वो कीर्तन हो रहा है, प्रसाद बांट रहे है, रथ यात्राएं हो रही है, इतना सब उन्होंने देखा, तो बड़े आकर्षित हो, बोले उस साइड में, इसके आगे इधर, तो वे कहाँ ले जा रही है लड़की मुझे? तो वो साथ साथ उनके पीछे भी जाते, और चलते 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 महाराज के पास चले गए, इंद्रदमन स्वामी के पास। इंद्रदमन स्वामी के पास आकर के बोले, इस व्यक्ति के पास ले जाओ, मुझे इनके पास जाना है। और किसी को कुछ नहीं पता, वो बोले, कौन है ये व्यक्ति, मैं ऐसे अंजान के पास कैसे ले जाऊं तुझे, छोटी सी बच्ची थी। अगर बच्चा है तो ठीक है। तो आके कहा कि एक्सक्यूज मी, हूएवर इट इज, स्वामी जी, आई मीन स्वामी, उनको कुछ भी नहीं पता। तो कहा कि इनसे आप, मेरी बेटी जो है आपसे मिलना चाहती है, आई डोंट नो हु आर यू एंड सी ऑल्सो डजंट नो हु आर यू। तो स्वामी जी बात किए उनसे, इंद्रदमन स्वामी बात किए उनसे कुछ, और बात करने से पता पड़ा कि उसको कृष्ण भक्ति में इतना रुचि है, उसको यही कार्य करना है, उसको कीर्तन ही करना है, उसको प्रसादी खाना है, इतनी छोटी बच्ची, और ये सबको बार बार। तो फिर महाराज तो समझ गए होंगे ये इसका पूर्व जन्म का है, तो उसको कहा कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम आपकी सुविधा करते हैं, आप यहीं आसपास में 2 दिन रहो और इस अपनी बेटी को इस कार्यक्रमों में आने दो, इस प्रकार से। सो ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दिया क्योंकि ऐसा होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण, बस कुछ नहीं, कीर्तन सुना तो आकर्षण हुआ, लेक्चर सुना तो आकर्षण हुआ, बड़ा अच्छा लगा, पता नहीं क्यों क्यों है, पूर्वाभ्यास से रियते। तो ये ऑटोमेटिकली इस प्रकार का आकर्षण उसको होने लगता है ऑटोमेटिकली, और उसके पूर्व जन्म के संस्कार तुरंत उसको काम में आते, वो संस्कार उसके होते, वो चोरी नहीं करेगा, वो उसको पहले से ही मांस के प्रति पहले से ही उसको परेशानी होगी, तो खा ही नहीं पाएगा, वो नशा नहीं कर पाएगा, वो क्यों, उसको बस अंदर से अच्छा नहीं लगता। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार वो पूर्व जन्म से इधर इधर आते हैं, और अगर तभी पता कैसे पड़ेगा कि भी आगे हम सही है गलत है, पूर्व जन्म का हमारा है या नहीं है इत्यादि, यू नो, कई बार होता है कि हम ऐसे ही बिना किसी लॉजिक से, हाँ प्रभु भगवद गीता में बताया था ना पूर्व जन्म मेरा पूर्व जन्म से, ऐसे इस तरह से कोई फायदा नहीं है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप गुरु के माध्यम से भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो, और गुरु आप भले, गुरु आपका जानते हैं, मैंने बताया ना, गुरु भले जानते हो कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, लेकिन आज तक कभी बताया आपको कि आप पूर्व जन्म में क्या थे? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जानते हैं कि आपको किस तरह से आगे बढ़ाना है। हम आपको पूर्व जन्म का अभिमान नहीं करने दे सकते आपको कि पूर्व जन्म में ये थे वो थे, जो भी थे पूर्व जन्म में सफल नहीं हुए तभी तो इधर आना पड़ा ना। तो आपको अभी मिस कहने का तात्पर्य कि गुरु के शरणागति के माध्यम से हमें इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, पूर्व अभ्यास को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो उस ऐसी अवस्था में फिर कृष्ण आपको हेल्प करेंगे, फिर कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। आपको अंदर से ऐसे फीलिंग होती होगी कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, अंदर से ऐसा कोई धक्का मार रहा है आपको, क्यों? क्योंकि पूर्व संस्कार थे। तो मैं गुरु की शरणागत हुआ और फिर कृष्णा आपको सहायता करे, तू इधर से उधर पटकेगा इस जन्म में तुझे, अब माया में नहीं गिरने दूंगा, तू वापिस आ मेरे धाम, कब से तू इधर उधर भटक रहा है, बहुत हुआ तेरा खेल, चल वापिस मेरे धाम। नहीं लेकिन मुझे ये करना है वो करना है, अभी तू तो कुछ भी बोले, भगवान सोचेगा ना ऐसे, तेरी सारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं थोड़ी बैठा हूँ, तेरी सारी इच्छा पूरी नहीं करने का ही काम है मेरा, तू अब मेरे वापिस आ जा मेरे धाम, फिर देखा जाएगा आगे। तो भगवान इस तरह से कई बार ट्रीट करते, जैसे हम अनुगुणामी हरिष्ये तद धनम शनि, भगवान बोलते हैं कभी कि कभी कभी मैं मेरे भक्त पर विशेष कृपा करने का प्रयास करता हूँ तो उसके पास जो कुछ है वो सब छीन लेता हूँ, उसका धन छीन लेता हूँ, उसकी कीर्ति छीन लेता हूँ, उसका ऑपुलेंस छीन लेता हूँ। अरे इतना निर्दयी भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेरे पास आ जाएगा बाद में, ऐसा होता है। अरे मेरी इतनी आसक्ति थी, मैं इतना लगाव था, उसको ही खत्म कर दिया, खत्म मार डाला उसको ही। अरे वैसा क्रूर है भगवान, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अरे भाई तू फंस जाता उसके अंदर, तू ना फंसे इसके लिए मुझे करना पड़ा ये, और तू पहले से समझ लिया होता तो मुझे नहीं करना पड़ता ये। अगर आप भगवान से दूर जाएंगे ना तो भगवान, अगर आप भगवान को प्रिय हो और आपको भगवान प्रिय है तो भगवान आपको फिर कड़वा शिक्षा भी देंगे, मजा भी चखाएंगे। ऐसी अवस्था मत लाने दीजिए कि भगवान को आपके सामने थोड़ा कठिन बनना पड़े, कठिन निर्णय लेने पड़े, इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसके हाथ पांव तोड़ने पड़ेंगे तब जाके ठीक होगा, लाइक दैट। सो टेक्स्ट नंबर 45 में, बाद में अभी अंत में अभी दो तीन श्लोक है इस चैप्टर में, जिसमें कहा गया है कि कैसे और कब योगी अंतिम सिद्धि को प्राप्त करता है। बढ़िए, टेक्स्ट नंबर 45।
और जब योगी समस्त कर्म से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतर तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है।
हाँ, तो अगर कोई योग भ्रष्ट है भी, समझ लो योग भ्रष्ट है भी, उसका पतन हुआ था और अभी वापिस संभल गया, तो ऐसा व्यक्ति को शॉर्ट टर्म वाला है उसको अधिक मेहनत करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म वाले को तो तुरंत हो जाता है प्रॉपरली, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला होता है उसको अधिक प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले के लिए तो ये अच्छा अवसर है कि वो सीधा क्या धीमताम फैमिली, योग माया धीमताम, ऐसे ऐसे फैमिली में उसका जन्म हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले को तो बेचारे को एबीसीडी कई बार शुरू करनी पड़ती है। तो इस प्रकार आगे कुछ चैप्टर्स में आएगा कि वो सुकृति क्रिएट होती है, सुकृति का जान दो, सुकृति क्या होता है? सुकृति ऐसा होता है कि एक ऐसा आपको मोटिवेशन या ना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है, या एक ऐसा एंट्री पास होता है उसको बोलते हैं, क्रेडिट मिलती है इस प्रकार की, जिससे आप कुछ प्राप्त कर सकते हो, जैसे कुछ अच्छे कार्य किए तो इसका परिणाम आएगा कि आपको स्वर्ग में सुख मिलेगा, बहुत संसार में सुख मिलेगा, तो ये रिएक्शन वाला है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें आपको मुक्ति की अवस्था मिल सकती है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें आपको भक्तों की संगति मिल सकती है, इस तरह से अलग अलग कार्यों का सुकृति प्राप्त होता है, उसकी चर्चा करेंगे आगे जाके बाद में। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म वाला उसको केवल थोड़ा सा सुकृति था, वो सुकृति के कारण सु अर्थात अच्छा, कृति का अर्थ किया हुआ कार्य, सुकृति, तो वो जाता है धनवान सुशी राम श्रीमताम उसके घर पे, लॉन्ग टर्म वाले को धीमताम फैमिली के घर पे। टेक्स्ट नंबर 46।
योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो।
तपस्वी भी अधिक योगी, ज्ञानी से भी अधिक है, तपस्वी भी से भी अधिक है, यू नो सब प्रकार से योगी बेस्ट है। योगी इज ग्रेटर देन एसेटिक, ग्रेटर देन एम्पिरिस्टिक, एमपी इज रिसिस्ट एंड ग्रेटर देन डेफिनेटिव वर्कर। किससे किससे? तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्मी से, ये सबसे योगी श्रेष्ठ है। भगवान यहां स्पष्ट बता दो, दिस इज यू नो जब तक वो तपस्या का पालन किया लेकिन उसने जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अगर आप देखो पहले से देखोगे योगा लेटर में भी, तो अभी उसका कोई फायदा नहीं है। अगर वो कर्मयोगी है, कर्मी है, या एवं कर्मयोगी भी है, तो फल के प्रति आसक्त हो सकता है, इसलिए उससे भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी है, अगर वो परमात्मा में लीन, ब्रह्म में लीन होने की विचार से ग्रस्त है, तभी भी उससे भी योगी सब प्रकार से श्रेष्ठ है। तो एक रूप से देखा जाए तो ये योगा लैडर में सबसे ऊपर योगी आता है, और उससे भी प्रभुपाद यहां तक बताते हैं कि उससे भक्त सबसे उत्तम है, वो योगा लैडर में सबसे ऊपर है। यहां पर स्पष्ट कर दिया, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, निष्काम कर्म योगी से भी योगी श्रेष्ठ है, सबसे योगी श्रेष्ठ बताया गया है। अभी ये भगवान ये बता दिया कि ये सभीयों में सब में योगी श्रेष्ठ होता है, भक्त सबसे उत्तम होता है, लेकिन ये योगियों में सबसे सभी में योगी श्रेष्ठ है। अभी सारे योगियों में कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है? यू नो एक तो फिल्टर डाला पहले कि सारे योगियों में कर्मयोगी, भक्त, ज्ञान योगी, इसमें से कितने कौन सा सबसे उत्तम है? तो भगवान ने कहा योगी श्रेष्ठ है। अच्छा योगी, तो योगियों में कौन सबसे श्रेष्ठ है वो नेक्स्ट में बताएंगे। नेक्स्ट वाला,
योगी नाम अपि सर्वेषां मध्यगति अंतरात्मनां श्रद्धावान भजते योगं समय युक्तत्व मत। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है और योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है।
हाँ, तो उसमें तात्पर्य का ये लाइन पढ़िए, द कल्मिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ योगा प्रैक्टिस लाइज इन भक्ति योगा। लिखा है वो कौन सा लाइन है?
यहाँ पर बच्चे
सब प्रकार के योग अभ्यास योग पद्धतियों का अंत भक्ति योग में होता है।
भक्ति योग में सर्व प्रकार ना योगिनी परिसीमा आवे छे। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति सुधी पहुंचवाना साधन मात्र छे। योग नो वास्तविक अर्थ भक्ति योग छे। अन्य सर्व योग भक्ति योग रूपी गंतव्य सुधी प्रगति करावे छे। कर्म योग थी मांडी भक्ति योग सुधी नो आत्म साक्षात्कार नो मार्ग लांबो छे। सकाम कर्म फल नी आशा विना नो कर्म योग आ मार्ग नी शुरुआत छे। ज्यारे कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य नो वधारो थाय छे त्यारे आ अवस्था ज्ञान योग कहेवाय छे। ज्ञान योग में ज्यारे अनेक भौतिक प्रक्रियाओ द्वारा परमात्मा ना ध्यान में वृद्धि थाय छे अने मन तेमना में परोवाई जाय छे त्यारे तेने अष्टांग योग कहे छे। आ अष्टांग योग ने पार करीने ज्यारे मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण ने समीपे पहुंचे छे त्यारे ते भक्ति योग कहेवाय छे। हकीकत में भक्ति योग ज अंतिम लक्ष्य छे, परंतु भक्ति योग नु सूक्ष्म विश्लेषण करवा माटे अन्य योगो ने समझी लेवानो होय छे। तेथी जे योगी प्रगतिशील छे ते आ शाश्वत कल्याण ना सत्य मार्ग पर होय छे। जे कोई एक बिंदु पर अटकी जाय छे अने वधु प्रगति करतो नथी ते कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी वगैरे नामोथी ओळखाय छे। जे कोई मनुष्य भक्ति योग पामवा ભાગ્યશાળી થાય છે તો જાણો કે તેણે સર્વયોગો પાર કર્યા છે. તેથી જેવી રીતે આપણે કહીએ છીએ કે સમગ્ર દુનિયાના પર્વતોમાં હિમાલય સૌથી ઊંચો છે તથા જેનું સર્વોચ્ચ શિખર એવરેસ્ટ છે, તેમાં કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થવું એ યોગની સર્વોચ્ચ અવસ્થા છે. કોઈ મહાભાગ્યશાળી મનુષ્ય જ વૈદિક વિધ્યાન પ્રમાણે ભક્તિ યોગનો માર્ગ સ્વીકારી કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થાય છે. આદર્શ યોગી શ્યામસુંદર કૃષ્ણ પર પોતાનું ધ્યાન એકાગ્ર કરે છે કે જે મેઘ જેવા સુંદર શ્યામ વર્ણના છે, જેમનું કમળ જેવું મુખ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, જેમના વસ્ત્ર રત્નોથી જળહળે છે અને જેમનો દેહ પુષ્પહારથી શોભાયમાન છે. સર્વ દિશાઓને પ્રકાશિત કરતી તેમની દેહક્રાંતિ બ્રહ્મજ્યોતિ કહેવાય છે. તેઓ રામ નરસિંહ વરા તથા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ જેવા વિભિન્ન સ્વરૂપે અવતરે છે. તેઓ સાધારણ મનુષ્યની જેમ માતા યશોદાના પુત્ર રૂપે અવતરે છે અને કૃષ્ણ ગોવિંદ તથા વાસુદેવ એવા નામે જાણીતા થાય છે. તેઓ પૂર્ણપતિ પૂર્ણ સખા તથા પૂર્ણ સ્વામી છે અને સમગ્ર ઐશ્વર્ય તેમજ દિવ્ય ગુણોથી ભર્યા ભર્યા છે. જે યોગી ભગવાનના આ લક્ષણોથી સંપૂર્ણ રીતે સભાન હોય છે તો તે સર્વોચ્ચ યોગી કહેવાય છે. યોગીની આ સર્વોચ્ચ અવસ્થા કેવળ ભક્તિ યોગ દ્વારા પામી શકાય છે, જેનું સમર્થન વૈદિક સાહિત્ય કરે છે.
ઓકે, સો યહાં પર હમને પ્રભુપાદ બહુ સુંદર રૂપ સે બતાયા કે જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ઇન સભી યોગો મેં કિસ તરહ સે ભક્તિ યોગ સર્વશ્રેષ્ઠ હૈ, ઓર ઉન સભી યોગીઓ મેં ભક્તિ યોગ મેં ભી મદગતિન અંતર આત્મના જો નિરંતર મેરા ચિંતન કર રહા હૈ, નિરંતર મેરી ભક્તિ મેં લગા હુઆ હૈ, વો વ્યક્તિ સર્વશ્રેષ્ઠ હૈ. યહાં પર પ્રભુપાદ ને હિમાલય કા એક્ઝામ્પલ લિયા, લેકિન ભક્તિ કા કિસ પ્રકાર કા હોતા હૈ, અગર સમજ લો કે ચાહે કોઈ વ્યક્તિ એવરેસ્ટ તક ભી હો, અગર પર્વત અલગ અલગ હો સકતે હૈ, લેકિન ઉસકે બીચ મેં અગર માઉન્ટ મેરુ ગોલ્ડન સોને કા બના હુઆ, સોને કા પર્વત, સોને કા પર્વત અપને આપ મેં વિશેષ હૈ કે નહીં? ચાહે આપ કિતને હજાર પર્વત હો, કોઈ છોટા હો કોઈ બડા હો, લેકિન વો સોને કા પર્વત તો હુઆ નહીં, સોને કા પર્વત તો અપને આપ મેં વિશેષ હૈ. તો ઇસ તરહ સે કૃષ્ણ ભક્તિ જો હૈ યા વૈષ્ણવ જો હૈ વો ભક્તિ યોગી વો ગોલ્ડન માઉન્ટેન જૈસા હૈ, સુવર્ણ પર્વત, ચાહે વો કોઈ બડા યોગી હો, એવરેસ્ટ તક પહોંચ ગયા હો, આઈ મીન ઉસ પ્રકાર કે ઇતના બડા હો, લેકિન ઉસકે સામને ગોલ્ડન પર્વત કે સામને વો ઉસકા કોઈ મૂલ્ય નહીં હૈ. તો ઇસ તરહ સે કૃષ્ણ ભક્તિ જો હૈ વો પૂર્ણ રૂપ સે શ્રેષ્ઠ હૈ યોગીઓ મેં. ઇસ બાત કો કઈ બાર સમજ નહીં સકતે લોગ, કઈ બાર હોતે કે યોગ અષ્ટાંગ યોગ કરને કે બાદ વો કુછ લોગ બોલતે મેં યોગા કરૂંગા, કુછ બોલતે મેં કર્મ કરૂંગા, કુછ બોલતે મેં જ્ઞાન કરૂંગા, લેકિન આપકો ફિર બતાના પડતા હૈ, દેખો ભગવાન ભગવદ ગીતા મેં ક્યા કહેતે હૈ, કૌન સા યોગી સર્વશ્રેષ્ઠ હૈ. યહાં પર તીન પ્રકાર કે હૈ, યુક્ત તમ, યુક્ત યુક્ત યુક્તતર ઓર યુક્તતમ. તો કૌન સા યુક્તતમ કા અર્થ હોતા હૈ? તો બેસ્ટ વન, સુપરલેટિવ, યુક્ત જુડા હુઆ, યુક્તતર અચ્છા હૈ, બેટર હૈ, ઓર યુક્તતમ બેસ્ટ, એ સબસે ઉત્તમ હૈ, કૌન? કૃષ્ણ ભક્ત. તો ઇસ તરહ સે વો જુડતા હૈ ભગવાન કી સેવા મેં. વો ભક્ત જબ અષ્ટાંગ યોગ કે સમજ લો અષ્ટાંગ યોગ કે માધ્યમ સે ભી જુડતા હૈ તો ભક્તિ યોગ મેં આતા હૈ, લેકિન ભક્તિ યોગ કા અર્થ હોતા હૈ સેવા, ડિવોશનલ સર્વિસ, ઓર યે સેવા પ્રેમ સે કી જાતી હૈ, યા પ્રેમ સેવા સે પ્રસ્તુત કિયા જાતા હૈ. તો જબ યે સે યે પ્રેમ કા પ્રવેશ હોતા હૈ કિસી સાધક કે જીવન મેં, તબ વો ભક્તિ યોગ કે માધ્યમ મેં જુડતા હૈ, ક્યુંકિ અભી તક અષ્ટાંગ યોગ તક ઉસકે હૃદય મેં ભગવાન કે પ્રતિ પ્રેમ કા સ્થાપના નહીં હુઆ થા, પ્રેમ સે દૂર થા, અભી સબ મેકેનિકલ પ્રોસેસ સે ગુજર રહે થે હમ લોગ, લેકિન वास्तविक प्रेम तभी शुरू होता है जब वो भक्ति योग के आचरण में जुड़ता है। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग भी अधिकतर दीक्षा लिए हुए या ब्रह्म दीक्षा लिए हुए दीक्षित ने पूर्ण रूप से भक्त नहीं बन पाते, इसलिए मिश्र भक्त बन जाते हैं। मिश्र भक्त का अर्थ क्या होता है कि उसमें निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग का मिश्रण होता है। क्यों मिश्रण होता है? क्योंकि हम फल को भगवान को अर्पण करते हैं लेकिन कर्म में आसक्त अभी भी रहते हैं, और कई बार हम सही में फल में भी आसक्त होते हैं, जैसे कर्मियों की भांति हमें फल में भी आसक्ति होती है कई बार, क्योंकि हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए। लेकिन क्योंकि हमने एलिवेटर का उपयोग करना शुरू किया है, भक्ति योग में जुड़ गए हैं, तो ये ज्ञान और कर्म ये धीरे 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 अपना साथ छोड़ देंगे, धीरे धीरे इससे मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए बार बार बताया जाता है कि ज्ञान और कर्म से मुक्त, ज्ञान और कर्म से मुक्त, ज्ञान और कर्म से मुक्त, उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि अभी भी हमारे हृदय में ज्ञान और कर्म का प्रभाव है, इसलिए इसको मिश्र भक्त बोलते, शुद्ध भक्त नहीं बोलते। अधिकतर लोग मिश्र भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त बहुत कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं। उसकी वर्णना भी सातवें अध्याय में आएगी। सो छठा अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। सो अगर आप चाहे तो हम आपको इस छठे अध्याय का वो दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स का लिस्ट। एक्चुअली आप लोग का अपना कर्तव्य होना चाहिए, ये खुद ढूंढना चाहिए, लेकिन अगर हम बताएंगे नहीं तो शायद कई बार भक्त लोग इसका कष्ट भी नहीं उठाते ढूंढने का।
ऐसा है, अभी अभी हम तो उस स्थिति में है ना, आगे बताया ना कि कर्म करे फल, हम तो इस स्थिति में है कर्म कोई और करे फलाने तो उससे माइनस स्थिति में है अभी।
सही बात है, इसलिए
प्रभु जी हमारा जो क्लास स्टार्ट होता है तो उसमें क्या 10 मिनट आपका कीर्तन सुनने को नहीं मिल सकता?
हम ऑलरेडी टाइम स्ट्रगल करते हैं ना खत्म करने में, ये चैप्टर हमसे खत्म नहीं हो पा रहे जल्दी जल्दी। आई मीन आपका भाव अच्छा है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमें बहुत सारी चीज कवर करनी होती है, इसलिए हम नहीं कर पाते। ऐसा हो सकता है कि 10 मिनट पहले शुरू करें तो कीर्तन हो सकता है, लेकिन उसमें बेटर है कि आप भक्त लोग कीर्तन करो। मैं आपको एग्जाम्पल्स का लिस्ट दे रहा हूं, आप सब भक्तों के पास वर्कशीट तो है राइट? वर्कशीट
छोटे छोटे
फिल इन द ब्लैंक्स और
ऐसे वाले
आपके पास नहीं है?
मेरे पास तो नहीं है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन आंसर है।
नहीं केवल क्वेश्चन नहीं, वो तो असाइनमेंट क्वेश्चन है।
असाइनमेंट
है
और जो निबंध
ऐसे लिखना। हाँ, उसके अलावा भी एक किताब है जिसमें आपको अच्छा हाँ तो आप हिंदी या नहीं, आपको अप्रेम मिला से गिरा प्रभु को बोलो है आपके पास? कौन से लैंग्वेज में? हिंदी में प्रभु जी को? हाँ तो आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो और किसी भक्त के पास नहीं है ऐसा कुछ है? सबके पास है आई बिलीव, है ना? आपके पास भी है श्लोक का लिस्ट? नहीं आपके पास, लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो सब है ना आपके पास? ओके, तो प्रभु आप उनको हिंदी का कॉपी आप दे देना। છે. ओके, तो यहाँ पर टेक्स्ट नंबर 1 में है शरीर और उनके अंगों का विवरण. एग्जाम्पल, टेक्स्ट नंबर 3 में योगा लेटर
3 में क्या
सीढ़ी, ऐसा नहीं सीढ़ी लेटर सीढ़ी चढ़ने का होता सीढ़ी. टेक्स्ट नंबर 6 में मित्र शत्रु. टेक्स्ट नंबर 19 में लैंप ज्योत दिया. टेक्स्ट नंबर 24 में उछिदिया का एग्जाम्पल है, जो समुद्र को सुखाने निकली थी. टेक्स्ट नंबर 29 में माता का उदाहरण है. टेक्स्ट नंबर 34 इसमें रथ का उदाहरण है. रथ थर्टी फाइव में भूखे व्यक्ति का उदाहरण है. और 36 में अग्नि का उदाहरण है. थर्टी सिक्स उसमें अग्नि का उदाहरण है. और 47 में हिमालय का उदाहरण. अग्नि तो मैं ये ऐसा करता हूँ कि आप अष्टांग योग के जो 8 स्टेजेस है वो समझ गए. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. और ये 8 के 8 का क्या क्या उसमें क्या क्या करने का होता है, वो किसके लिए होते हैं, कौन सी अवस्था में. फॉर एग्जांपल प्रत्याहार किसके लिए होता है, कौन बताएगा? प्रत्याहार में क्या होता है? ओके ओके. नियम में क्या होता है?
जो नहीं करना है करना है.
दूसरा
ओके. धारणा किसे कहते हैं?
चित्त में किसी को ऊपर अपने
ध्यान केंद्रित करना.
इसका उद्देश्य क्या होता है? बुद्धि को वश में लाना. आसन किसे कहते हैं?
शारीरिक पोषण.
प्राणायाम से क्या फायदा होता है?
माइंड
कंट्रोल में आता है. ओके, समाधि अवस्था किसे कहते हैं?
जिसमें हम भगवान का सिर्फ दर्शन कर सकते
हैं। अच्छा, सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे अलग अलग योग में अलग अलग समाधि हो सकती है। तो इज दैट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नाउ? अष्टांग योग बड़ा आसान है, कुछ भी है इसमें। तो ये अष्टांग योग का नियम है, और बस एक योगा रूढ़। और योगा रूढ़ किसे कहते हैं? योगा रूढ़ किसे कहते हैं?
जो योग के ऊपर स्थित हो गया है और जो कोशिश कर रहा है वो रूढ़।
योगा रुरुक्षु है। यस। और सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन सा है?
जो भगवान श्री कृष्ण,
जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग गया।
और ज्ञान योग और अष्टांग योग में कौन सा श्रेष्ठ है? ज्ञान योग और अष्टांग योग दो में से ऊपर नीचे कौन सा?
ज्ञान योग।
अष्टांग योग अष्टांग योग उसके बाद
नहीं, ज्ञान योग के बाद
अष्टांग योग। आप लोग स्टडी करना है इसके विषय में।
ज्ञान योग सबसे ज्ञान योग के बाद
अष्टांग। जब ज्ञान नहीं होगा तो अष्टांग योग कैसे करोगे? ज्ञान तो ऊपर
ज्ञान होकर
नहीं, ज्ञान
ही ऊपर अष्टांग ऊपर। आप ही बता दीजिए, आप बता दीजिए, वरना कंफ्यूज रहेंगे।
पहले कर्मी होता है, फिर त्यागी होता है, उसके बाद ज्ञानी होता है, फिर योगी होता है, फिर भक्त होता है।
अष्टांग योगी आया ना, वही है।
क्यों? क्योंकि जब किसी के पास ज्ञान की प्राप्ति आती है, उसके बाद फिर अष्टांग योग में वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन आठ अवस्थाओं में से पहली पांच अवस्था है वो निष्काम कर्म योग के अंदर आती है। अर्थात व्यक्ति, निष्काम कर्मयोग वाला व्यक्ति अष्टांग योग को अगर प्राप्त करना चाहे तो वो ज्ञान योग के माध्यम से धीरे 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 अष्टांग योग तक पहुंच सकता है।
तो जी,
यस,
समझ में तो आ जाता है। हाँ। लेकिन याद रखना मुश्किल हो जाता है।
याद रखने वाली बात तो है ही नहीं इसमें कुछ। हाँ। रोटी को सब्जी के साथ खाना, ये कोई याद रखने वाली बात है? वो तो कोई याद रखने वाली बात तो है ही नहीं ना। मैं कहने का तात्पर्य कि आपको इस तरह से इसको लेना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि मिस कुर्ता ऊपर ही पहना जाता है, उसको नीचे नहीं पहना जा सकता। तो अभी इसको आप भूल नहीं सकते ना। सुबह उठ करके याद थोड़ी रखना है कि आपको कुर्ता ऊपर ही पहनना है। तो इस तरह से इसको भी हमें अपने कॉन्सेप्ट में, अपने लाइफ में इस तरह से इसको ला देना चाहिए ताकि इसको याद रखने की आवश्यकता ना रहे। वो अपने आप ही क्लियर ही हो गया माइंड के अंदर। याद क्यों रखे, इतना कष्ट क्यों लेना याद रखने का? अपने आप ही रहना चाहिए सब। तो क्या होगा, बार बार पढ़ोगे, समझोगे, सुनोगे तो ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा कि अगर आपको ये थोड़ी याद रखना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, वो तो आपको पता ही है। भले उसका आचरण हमारे लाइफ में होता नहीं, आचरण नहीं होता हमसे, वो गलत बात है। आई मीन वो एक दूसरी बात है।
प्रभु जी, आइडियल चीज तो बहुत कुछ है लेकिन 95% लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते, इसीलिए आइडियल आइडियल रह जाता है।
हाँ, इसका एक रीजन ये है कि हमारा संगति का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। हम संगति का लाभ उठाना चाहिए। भक्तों की संगति में रहेंगे तो हम उसी मंच पर रहेंगे जो मंच पर हम रहना चाहते हैं। जनरली क्या होता है कि फ्लक्चुएशन आता है, भक्तों की संगत में नहीं जाते तो हमारे लाइफ में फ्लक्चुएशन आता है। फ्लक्चुएशन का होता है कि अचानक से मार्ग के प्रति आकर्षित हो गए, थोड़ा कम हो गया आकर्षण, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से बहुत सारे आकर्षण होते हैं। बाद में फिर कभी कभी हाँ तो बड़ा अच्छा लगा हमें, ये कभी कभी होता है ऐसा। सो याद रखने का प्रयास मत करो, उसको लाइफ में डाल दो तो धीरे 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 वो एक आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। सो हम सातवां अध्याय शुरू करें। सबसे पहले ये पूरा कंप्लीटली डिफरेंट सेक्शन होता है इसमें। अभी तक हम पहली बार जब बताया था चैप्टर 1 से 6 अलग अलग प्रकार के योग और योगालय की विषय में बताया था, उसमें किस तरह से कोई व्यक्ति शुरू शुरू में शरीर और आत्मा के अंतर को भगवान भगवदगीता के सेकंड चैप्टर में सारी भगवदगीता का सार बताया। लेकिन फिर तीसरे जैसे फिर भगवान ने बताना शुरू किया कि हर एक व्यक्ति को देवताओं के साथ वो लोग देवताओं को संतुष्ट करें, देवताओं उनको संतुष्ट करें, इस तरह से आपस में एक दूसरे को संतुष्ट करने से यज्ञ चक्र इनका जो साइकिल है वो चलती रहेगी और आपस में इन लोग का काम चलता रहेगा। लेकिन धीरे 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 वो व्यक्ति कर्म के माध्यम से अपने आप को शुद्ध कर सकता है, गुणों से मुक्त हो सकता है। बीच बीच में भगवान ने यह भी बताया कि मैं भी कर्म करता हूं देखो, और भगवान ने यह भी बताया कि मेरी संतुष्टि के लिए जो यज्ञ कर्म जो कर्म किया जाता है अन्नाद बहुति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवंती पर्जन्य यज्ञात कर्म समुद्भव। भगवान ने इस तरह से बताया कि बारिश होती है अन्न से, अन्न अन्न के सब लोग अन्न पर आधारित है सब जीव, और ये सारे अन्न जो है वो वर्षा से आते हैं, वर्षा यज्ञ से आती है, यज्ञ नियत कर्तव्य कर्म से आते हैं, और नियत कर्तव्य कर्म वेदों से आते हैं, शास्त्रों से आते हैं। तो अर्थात जो व्यक्ति भगवान के बताए गए मार्ग पर चलता है केवल वही व्यक्ति सफल हो सकता है। अर्थात कर्म जो है यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, मेरे लिए या यज्ञ के लिए या भगवान की प्रस्तुत संतुष्टि के लिए कर्म करता है वो व्यक्ति सफल हो सकता है। फिर भगवान ने कहा कि कर्म से भी ज्ञान श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ज्ञान से वो व्यक्ति सबको शुद्ध कर सकता है, कर्म को शुद्ध कर सकता है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम, इस संसार में ज्ञान से पवित्र चीज संसार में कुछ है ही नहीं, इसलिए ज्ञान जो है वो उसके कर्म के तरीके को बदल देता है। ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करना वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करना, कर्म के फलों के आसक्ति रखकर कर्म करना जो है उससे अच्छा है ज्ञान। अर्थात ज्ञान और कर्म के बीच में निष्काम कर्म योग आता है। अर्थात वो व्यक्ति ज्ञान का पालन कर रहा है, कर्मों की आसक्ति है, फल की आसक्ति उसने ज्ञान का उपयोग किया और फल की आसक्ति उसने हटा दी, तो निष्काम कर्म योग तक पहुंचे। उसके बाद फिर वो ज्ञान योग को प्राप्त करता है, तो ज्ञान योग में ऐसी अवस्था तक वो पहुंच सकता है कि वो कर्म का भी त्याग कर सकता है। अर्थात अगर वो भक्ति योग के आचरण को करता है तो कर्म और उसके फल दोनों से ही मुक्त होने के लिए तैयार है। लेकिन अधिकतर समय ऐसा देखा जाता है कि ज्ञानी व्यक्ति अर्थात ज्ञान में जुड़ा हुआ व्यक्ति अधिकतर वो निराकार में अपने आप को विलीन करने में लग जाता है, या फिर वो ब्रह्म को ब्रह्म में अपने आप को जुड़ना चाहता है। लेकिन भगवान निरंतर बार बार इस चीज को बल दे रहे हैं कि कर्म श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म का त्याग मत करो, क्योंकि कर्म का त्याग परिपक्व होने के पहले अगर कर्म का त्याग कोई करता है तो परिणाम यह आता है कि संसार में वो उत्पात मचाता है अपने जीवन में दूसरों के जीवन में। लेकिन अगर वो व्यक्ति परिपक्व होने के बाद कर्मों का त्याग कर सकता है फिर भी नहीं करता है, क्यों? दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, फिर भी वो कर्म करता रहता है। इसलिए अगर वो व्यक्ति चाहे तो मुक्ति की अवस्था तक पहुंच सकता है और उसके लिए उसको कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज फिर भगवान ने बताया कि अगर यही मुक्ति की अवस्था आपको दूसरा एक तरीका भी है अष्टांग योग के माध्यम से वो हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी आपको ज्ञान की आवश्यकता रहती है। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान होगा तभी आप अष्टांग योग को स्वीकार कर पाएंगे। तो अष्टांग योग को स्वीकार करने के लिए पहले निष्काम कर्म योग से कार्य करना पड़ता है, फिर ज्ञान से युक्त होकर और धीरे धीरे फिर यम नियम आसन का उपयोग करके फिर वो समाधि तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से भगवान ने योगा लैडर को समझाया। अब भगवान 1 से 6 के बाद 7 से 12 तक भक्ति योग की महिमा करेंगे, भक्ति योग की चर्चा करेंगे। अभी तक तो हम जिसकी चर्चा कर रहे थे वो ऐसे विषयों की चर्चा कर रहे थे जिसमें हमारा इतना प्रैक्टिकली हमें इतना अप्लाई सब नहीं होता, क्योंकि हमारा उद्देश्य भक्ति योग है और प्रभुपाद हर एक चैप्टर में भक्ति योग का महिमा बताया है। लेकिन अब जो चैप्टर आने वाले हैं 7 से 12, इसमें पूर्ण रूप से भक्ति योग, एक भक्त को क्या करना चाहिए उसके विषय में बताया गया है, भक्ति योग के विषय में। तो 5-6 अध्याय है बीच के, भक्ति योग के है, और उसके बाद के जो 3-6 अध्याय है, पार्ट 3 जो है समरी है प्रकृति और काल और इनका विभाग, उनके डिविजन्स, इन सब चीजों को बल दिया गया है अंत के 5 अध्याय में 6 अध्याय में। तो अब बीच के जो 6 अध्याय है उसमें 7वां अध्याय जो है वो उसका हम चर्चा करते हैं, क्योंकि 47 नंबर के जो श्लोक में भगवान ने अंत किया था मदगतेन अंतर आत्मना के रूप में, मदगतेन मेरे में अपने आप को जिसने युक्त किया है, मुझ में लगाया है जिसने, मैं तो ऑटोमेटिकली भक्त बन गया। तो उसकी चैप्टर की शुरुआत ही होती है कि ये कैसे करना। चैप्टर 6 के अंत में कहा कि मत गतेन अंतरात्मना, तो 7वां अध्याय में अर्जुन कोई प्रश्न पूछ ही नहीं रहा है, भगवान इतने उत्साह में आ गए तो खुद ही बताना शुरू कर दिया, वो कोई प्रश्न है ही नहीं इधर। और 47 में बताया कि मुझमें जो लगा हुआ है मन उसका वो श्रेष्ठ योगी है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कैसे किया जाए, फिर भगवान 7वें अध्याय का शुरुआत करते हैं इस तरह से। जो श्रद्धा क्या था श्लोक, योगी ना सर्वेशा श्रद्धावान भजते। प्रभुपाद बताता है कि भजते का अर्थ यहाँ पर सर्विस होता है, वर्शिप जो होती है और सर्विस, ये दोनों में अंतर होता है। वर्शिप का क्या होता है कि वर्शिप तो किसी और की भी हो सकती है, या वर्शिप में एक प्रॉपर स्टेट वेरी नाइसली कि भज धातु हियर एवरीवन व्हाट वी कैन स्पीक ऑफ वर्शिप देयर इज मोटिव, बट वी स्पीक ऑफ सर्विस देयर इज नो मोटिव, सर्विस इज लव, जस्ट एज मदर रेंडर सर्विस टू हर चाइल्ड विदाउट एनी मोटिव इट इज ओनली लव। एवरीवन कैन निग्लेक्ट द चाइल्ड बट मदर विल नॉट। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्शिप में, पूजा में क्या होता है, सामने हेतु होता है, लेकिन सेवा है, आपको प्रभु सेवा के पीछे भी भावना होती है ना, उसको सेवा थोड़ी बोलते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं सेवा जॉब तो सेवा सर्विस एंड जॉब एक नहीं है। कहीं कुछ लोग जॉब करते तो बोले मैं सर्विस करता हूँ, अरे सर्विस करते हो तो पैसा मत लो, डोंट चार्ज, पैसा नहीं देने का। अरे पैसा करते हो, पैसा लेते हो तो जॉब वर्क हुआ, जॉब हुआ, आपका सर्विस नहीं हुआ। मैं सर्विस करता हूँ, क्या सर्विस, सर्विस का अर्थ होता है कि सामने कुछ नहीं लेने का, उसको सेवा बोलते हैं।